चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषये गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नहि मां चरणं बोलो श्यावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय। मैंने कल कैकेयी मैया का चरित्र मैंने सुनाया, उसमें एक चीज मैं साफ करना चाहता था, स्पष्ट वो नहीं हुआ, ये कि भगवान के बड़े प्रिय हैं हनुमान जी, दूसरे नहीं है शंकर जी ही हैं, बने हैं राम की सेवा के, वही गोपेश्वर महादेव बनते हैं कृष्ण लीला में, वो उन्हीं के अवतार भीम हैं, भीम भी अलग से नहीं है, हनुमान जी के ही प्रकाश है, आंशिक प्रकाश। तो शंकर जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। जब तक कृष्ण को राम को कोई विशेष काम होता है तो शंकर के बिना नहीं दूसरा कर सकता। जैसे समुद्र से विष निकला तो उसको पिलाने के लिए हनुमान उनको ही शंकर की जरूरत थी, शंकर जी ने वो पान किया विष और गले में रख लिया, कहीं शरीर भीतर में जाएगा तो वहां पर हृदय में तो भगवान हमारे हैं, उनको कष्ट होगा। उसी तरह से कलयुग के प्रारंभ में जबकि चारों तरफ में अनाचार अविचार इत्यादि बढ़ गया, धर्म का करीब करीब तीन भाग ही खत्म हो गया, उस समय में धर्म कर्म अब ठीक रहा नहीं, लोग भगवान की आराधना करते और उनसे देही देही पुत्रम देही जसो देही धनो देही, बस यही मांग ही उनकी थी। भगवान ने कहा जिसे ये तो हमको तंग कर देंगे, हमको आराम नहीं करने देंगे, एक पैसे का बताशा ले आएंगे और दे करके और मांगेंगे, बहुत दिन भर मांगते रह जाएंगे तो मुझे विश्रामी नहीं होगा। इसलिए शंकर जी को बुलाया, कहा जी शंकर जी एक बात करो, मैं बहुत तंग आ गया हूं इन कलयुगी जीवों से, वो दिन भर ये दो ये दो ये दो देही देही देही, इसलिए तुम एक ऐसा मत प्रचार करो जिसका नाम मायावाद है, जो ठीक तो नहीं है किंतु हमारे हमको छिपाने के लिए इसकी जरूरत है, तुम ये प्रचार करो मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वम खलिदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म जितने बैठे हैं ब्रह्म है, पेड़ पौधे जो कुछ हैं, जीव जंतु जो कुछ है वो सभी ब्रह्म है, अतः ब्रह्म की क्या जरूरत है, हम ही तो ब्रह्म है तुम भी ब्रह्म है, इसलिए मांगने की उनसे कोई जरूरत नहीं, तुम सभी कुछ कर सकते, यदि ऐसा कर सकोगे तो तो ये भक्ति का तो विरोध होगा, किंतु मैं बच जाऊंगा। शंकर जी ने कहा हमको सब समय ऐसा ही करते हैं, मैं कहा भक्ति करके और दिन रात भगवान का स्मरण करके आनंद में मग्न रहता हूं, राम राम दिन रात करता हूं, और ये मुझसे कैसे होगा जे मैं भक्ति का वृद्ध में बोल, ये तो भक्ति नहीं है, ये तो भक्ति के विपरीत है। ये तुम्हारे अतिरिक्त और दूसरा कोई कर भी नहीं सह सकता है, इसलिए विष का प्याला लेना पड़ेगा पहले की बात। तो प्रभु जी का मन रखने के लिए शंकराचार्य के रूप में जगत में आए, आज से करीब करीब 3500 वर्ष पहले, और उन्होंने बौद्धों को यहां से विश्व से हटाने के लिए, इंडिया से और यह कुमत प्रचार करने के लिए उन्होंने कहा, उन्होंने वेदांत के भाष्य बनाए, बहुत से ग्रंथ लिखे, और बड़े बड़े पंडितों को, भक्त जो नहीं थे कर्मी ज्ञानी, उनको परास्त किया, और परास्त करके बौद्धों को भारत से भगाया, और ये मत नया चलाया, क्या सभी ब्रह्म है, सोहम सोहम सोहम, किंतु है ये भक्ति का विपरीत, कोई भगवान नहीं हो सकता है, भगवान अधिक से अधिक शुद्ध होकर के भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकता। तो शंकर जी ने ये विष भी अजम किया, ये कल बतलाने का हमारा तात्पर्य था, जो और किसी के द्वारा नहीं, जब जब जरूरत होती है शंकर जी को बुलाते हैं और शंकर जी से ऐसे असंभव बातें भी करा देते हैं, ये कल का कहने का हमारा तात्पर्य था। किंतु उन्होंने जो मत प्रचार किया वो ठीक नहीं, वो भक्ति के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है, भागवत के विरुद्ध है, गीता के विरुद्ध, गीता में उपनिषदों में भागवत में कहीं नहीं लिखा कि जीव ब्रह्म है, भगवान का दास्य है सब समय, इसलिए ऐसे ही विचार करने चाहिए। शंकराचार्य जी को हम लोग प्रणाम करते हैं, वो शंकर हैं, किंतु उनका यह विचार ये भक्ति के विपरीत है, वो कुछ लोगों को मिसगाइड करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। अब हम सीता जी के चरित्र पर आते हैं, कल हमने कई कई मैया की बात बतलाई, सुनते हैं कि वो पृथ्वी की बेटी थी, किसी के योनि से गर्भ से नहीं आई, स्वयं लक्ष्मी जी हैं, तो पृथ्वी की बेटी कैसी हुई, इस जगत में प्रकट लीला के लिए तो पृथ्वी की बेटी है, किंतु पृथ्वी की बेटी नहीं, पृथ्वी सबकी वो लक्ष्मी की लक्ष्मी है, मूल है, है? तो जिस समय रावण का प्रताप था, बड़ा भारी दिग्विजयी हुआ, ब्रह्मा से उसको वर मिले और शंकर जी से वर मिले, कोई उसे मार न सके, उसके 10 सिर हुए और कोई मारेगा तो वो मरेगा नहीं, फिर उसके सिर निकल आएंगे, अत्याचार करने लगा, विशेष करके बहु बेटियों पर, जैसे आजकल हो रहा है ऐसे ही, उससे भी अधिक अत्याचार होने लगा और वो अधिक करने लगा, जहां नाम सुने जी यहां पर खूबसूरत किसी की स्त्री है, बेटी है, बहू है, तो उसे चुरा लेता, लंका में ले जाता। तो एक समय उसी के कुबेर जी के लड़के की कोई बहू थी, उसको पकड़ लिया, पकड़ा था उसने, अभिशंपात दिया, श्राप दिया, बिना किसी इच्छा के, उसके बिना राजीनामा हुए, बिना उसकी इच्छा के, किसी का भी, लड़की का, बहू का, बेटी का यदि स्पर्श करेगा तो तुम्हारा शरीर उड़ जाएगा और तुम मर जाएगा। इसके बाद में वो कुछ सावधान हुआ, फिर विश्व का विजय किया। अब कुछ दिन इसलिए सीता जी को स्पर्श नहीं किया, मैं तो जल करके खाक हो जाता वो अभिसंपात से। तो वो रावण जब अत्याचार करने लगा तो उसने ऋषियों के पास में दंडकारण्य और इधर उधर ऋषियों के पास में अपने दूत भेजे कि हमें कुछ कर दो, राजा मैं हूं देश का इसलिए कर चाहिए, जो कुछ भी नाम मात्र के लिए तो कुछ कर चाहिए ही। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास में देने के लिए कुछ नहीं है, हम फल फूल यहाँ पर जंगल से पत्तियां खाते हैं, मूल खा करके जीवन निर्वाह करते हैं, हम आपको कहां से हम कर देंगे। तो उसके लोगों ने बतलाया जैसे तैसे, यदि कुछ नहीं है तो अपना जंघा चीर करके रक्त भी दो। कठोर आदेश पाकर के उनको बड़ा क्रोध हुआ ऋषियों को, अपने जंघे चीर चीर करके सब लोगों ने एक घड़ा भर दिया और रावण के पास में वो दूत ले गया। उन्होंने कहा जी ऋषियों ने कहा है यही जो घड़ा है जिसमें हमने दिया है रक्त अपना, ये उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, कोई उसे टाल नहीं सकता। जब वो ले गए तो वो लोग मंदोदरी के पास में पहले ले गए और उसको बतलाया जी ऐसा ऐसा बात है। उसने कहा जी तब तो बड़े भयंकर बात है, अब इसको बहुत दूर पहाड़ की तलाई में कहीं दूर में इसको लेकर के जमीन के अंदर में गाड़ दो, जो कभी कोई निकाल ना सके और कभी हमारे पति का अनिष्ट ना हो। उन्होंने अपने दूतों को भेज करके हिमालय के पास में, जनक जी के राज्य में हिमालय है, उसकी तराई में कहीं नीचे लेकर के गाड़ दिया। जब गाड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद में वहां पर सूखा पड़ा, सूखा जानते हैं वर्षा ही नहीं हो, वर्षा ना हो, चारों तरफ में हाहाकार मची है, जो पानी नहीं। उन्होंने विचार किया ब्राह्मणों और ऋषियों से विचार किया क्या करना चाहिए, पानी नहीं हो रहा, प्रजाएं बड़ी कष्ट पा रही हैं, बड़ी मुश्किल से अब तक जो कुछ भी पानी था वो सूख गया, खेती बाड़ी कैसी होगी, लोग कैसे जीवित रहेंगे। तो ऋषियों ने बतलाया जी एक बात कीजिए, आप हल पकड़िए और आपकी पत्नी हल को चलाए खेंचे, इस क्रिया से हम लोग मंत्र पाठ करेंगे और इससे वर्षा जरूर होगी। तो उन्होंने सब ऋषि महर्षियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और उन लोगों ने व्यवस्था की, एक सोने का हल बनाया, उसमें एक फाल होता है जो कि जमीन में चलता है, दो अंगुल का होता है तेज धार का, और उसमें सुनैना को अपनी पत्नी को खींचने के लिए लगाया और भी लोगों को लगा दिया, वो खींचने लगे और ये चलने लगे, वेद मंत्र पाठ होने लग गया, शंख और घड़ियाल ये सब बजने लग गए, थोड़ी देर में ही वो हल अटक गया जमीन में, उसका जो आगा का भाग है एक घड़े में घुस गया, उसी घड़े में रक्त वाला घड़ी में घुस गया, और फिर लोगों ने मिलकर के उसको जोर चलाया तो वो घड़ा जमीन से निकल गया है। तो ये क्या हो, आ इतने में बड़ी जोर से आंधी तूफान के साथ में बड़ी जोर से वर्षा आरंभ हो गई, उसमें से देखा क्या है, एक सुंदरी छोटी सी बच्ची निकल गई, अपने अंगूठे को कभी पान करती है पैर के और कभी कभी ऐसे करती है, बड़ी खुश है। देख करके महाराज जनक जी ने पहले उठाया और अपनी गोदी में ली, ये मेरी बेटी मेरी बेटा, बेटे बेटी तो थे नहीं, अब ये मेरी बेटी है, और उन्होंने सुनैना जी की गोदी में ये तो उनका जन्म बिता है। तो जब साकेत की अयोध्या की लक्ष्मी जी किंतु जब इस जगत में आती हैं तो इस प्रकार से अभिनय करते हुए आती है। अब ये सीता जी साधारण तो है नहीं, धीरे धीरे दिन दिने रात चौगने बड़ी सुंदर अलबेली के रूप में बढ़ने लग गई। इनके पिताजी के पास में पासी में एक बहुत बड़ा भारी धनुष रखा था, कौन सा, जिसको दधीची के हाड़ से बनाया गया था वज्र, और इंद्र ने उसी वज्र से
बित्तासुर
को मारा था, तो उसका कुछ भाग जो बच गया था उसे ये धनुष बना था, तो ये भी वज्र का धनुष था, साधारण था नहीं, वो वहां पर रखा था, इतना भारी था कि हजारों लोग मिलकर के उसको उठा नहीं सकते थे, और इंद्र ने उसे उठाया था, तो वो वहां पर रखा था। शंकर जी का धनुष था, वो वहां पर रखा करके पूजा रोज होती थी। सीता जी एक दिन उस धनुष को बाएं हाथ से ऐसे उठा लिया और उसको लिप पोत करके उसको रख करके उसकी पूजा कर दी। पिताजी कहीं गए थे बाहर, उन्होंने कहा जी तुम पूजा कर देना बेटी, तो उसने बाएं हाथ से झट उठा लिया, उठा करके उसको लिप पोत करके फिर रख करके उसको पूजा इत्यादि कर दी। उनको पता लगे हमारी बेटी ने तो इसको उठा लिया और इसकी पूजा की, तो बोले उसी समय अब वो 20-21 वर्ष की हो चुकी थी, पूर्ण यौवन उसका हो गया था, बड़ी सुंदर। उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी इसकी शादी तो हमें करनी है किंतु ऐसे तैसे लोगों से नहीं करेंगे, ऐसे लोग से हम करेंगे जो इस धनुष को उठा करके इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा दे। और सुन करके देश विदेशों से हजारों लोग आने लगे, देवता लोग भी मनुष्यों का रूप धारण करके राजकुमारों का वहां करके उठाने लगे, उठे नहीं। एक दिन रावण रात में आया, पहले लोगों के सामने नहीं, चोरी छिपे हम उठाए, और फिर पीछे जब उठ जाएगा तब शादी कर लेंगे, बड़ी सुंदरी लड़की है सुनते हैं, तो रात में आया तो थोड़ा सा उठाया तो वो झट कुर्सी के नीचे दब गया, गिर गया उसके ऊपर में दब गया, बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से उठा, वो भी तो बलवान, वो भी किसी प्रकार से उठा, फिर नहीं आया, कान पकड़ लिया जी हमको नहीं जाना है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े महिपाल सब आए, कोई नहीं उठा। गांव घर के लोग कहने लगे जी क्यों ऐसी प्रतिज्ञा की, अब तो कोई संसार में ऐसा है नहीं जो उसको उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा दे, क्या सीता जी कुंवारी रहेगी, तो हो ही है सोई वही होगा जो होना है, और हम चिंता नहीं करते, वो भी तो साधारण नहीं थे, ब्रह्मज्ञानी थे। अब विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को लेकर के मारीची का वध करके और गंगा पार करके आ रहे थे इधर ही, और विश्वामित्र जी जानते थे जी ऐसा होना है, वो भी भूत भविष्य जानने वाले सर्वज्ञ ऋषि थे, भगवान के परम भक्त थे, वो इसी नाते उन दोनों को लेते हुए बहुत से ऋषियों को साथ में लेते हुए आ रहे थे। जब गांव के निकट में कहीं आए तो एक पत्थर पड़ा था बड़ा सुंदर, और चारों तरफ में बड़ा सुंदर बाग बगीचा था किंतु कोई आदमी नहीं था, एक पत्थर पड़ा था। विश्वामित्र जी ने कहा जी इसको अभिशाप है, गौतम ऋषि इसके पति ने इसको अभिशंपात दिया, जानबूझकर के चंद्र का संग किया, इसलिए शिला के रूप में आप थोड़ा सा स्पर्श कर दीजिए। तो उनके कहने से स्पर्श करते ही चरणों से जो ही स्पर्श कर दिया, बड़ी सुंदर रहिल वो बन गई अहिल्या नारी। फिर उनके पति आए और फिर उनको लेकर के गए पवित्र होने के बाद। जनकपुर में पहुंचे, महाराज जनक ने बड़ा उनका आवभगत किया, स्वागत किया, उनको स्थान दिए एक बगीची में पास ही में, वहीं पर नगर से बाहर में, नगर से निकट ही वो रहे थोड़े दिनों। तो एक दिन के बाद में राम और लक्ष्मण गए बगीचे में टहलने के लिए और अपने गुरु जी के लिए पूजा के लिए पुष्प चयन के लिए। वहां पर सीता जी सहेलियों के साथ में भवानी पूजा के लिए आई। किस लिए भवानी पूजा? भवानी की पूजा करने की हमको। और देखी कि राम और लक्ष्मण वहां पर उसी बगीचे में पुष्प चयन कर रहे हैं। बस दो आंखें और दो आंखें प्लस चार आंखें हो गई। आंखें हो गई दोनों के नैनों में बस गए। राम ने कहा लक्ष्मण जिसे मुझे धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? प्रकुल की रीति ऐसी आई है कि इनका मन कहीं किसी में नहीं जाता है। आज इस राजकुमारी को देख करके मन में ऐसे क्यों न जाने क्यों मोह है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बात सत्य होने को है, इसलिए आपकी शादी यहीं पर इसी से होगी। हमको तो ऐसे ही सुख सूचना आंखें फड़क रही हैं, ऐसा मालूम होता है। इसके बाद में तो सीता जी के हृदय में बस गए ये राम, और राम के हृदय में भी बस गए। और फिर दूसरे दिन विश्वामित्र जी ने उनसे कहा राम से ये चलो जरा धनुष यज्ञ तो देखाएं। और महाराज जनक ने निमंत्रण किया कि हमने ये अबोध स्थिति में हमने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, अपने बच्चों को आप धनुष तो दिखलाइए। बस धनुष दिखलाया और राम ने क्या किया, लक्ष्मण की तरफ में इशारा किया। लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को दबा दिया, जैसे हिले नहीं, उसका संबंध नीचे से हो गया था। बस जब ही उन्होंने संभाल लिया लक्ष्मण जी, इसी की शक्ति है, उन्हीं की शक्ति से सारा विश्व टिका हुआ है। बस राम ने एक सेकंड के अंदर में लोगों के देखते और न देखते ही पलक लगते ही धनुष उठाया, उसने प्रत्यंचा दी और ऐसा करना है तब विश्व टूट गया है। बस से सीता जी का विवाह हुआ। रास्ते में परशुराम जी मिले, जाने के समय में बड़ी रगड़ हुई, उनकी सारी शक्ति इन्होंने ले ली, वहां पर पहुंचे। अब सीता जी पहुंची, अब कैकेयी बड़े आदर के साथ में पहले बहू के रूप में उसको सम्मान करके अपने कनक भवन में स्थान दिया। यहां तक तो ठीक रहा, अभी तक तो दिन बड़े सीता जी के बड़े अच्छे रहे। कभी दिन आते हैं और कभी दिन आते हैं। लक्ष्मी देखो जगत में आई हैं शिक्षा देने के लिए, उनको दुख सुख नहीं है, उनके लिए तो एक सेकंड का भी ये बात नहीं है उस लोक के लिए, किंतु यहाँ के लिए वो वहां का एक सेकंड यहाँ के कितने जुग जुग के बराबर हो जाता है। भगवान एक मिनट के लिए वहां से उतर करके लीला करते हैं, हम लोगों को मालूम होता है 11,000 वर्ष तक रामचंद्र जी ने जन्म, कृष्ण 125 वर्ष तक, किंतु उनके लिए एक क्षण का एक क्षण भी नहीं वहां की दृष्टि से। तो इसके बाद में राजा के अभिषेक की बात मैंने बतलाई, उसमें सीता जी रानी के रूप में बैठने वाली, और एक दिन ही पाशा पलटा और फिर हो गया क्या वनवास, घर में रहना स्वीकार नहीं किया राम ने, और सब लोगों ने समझाया सीता जी को, वो मानी नहीं, हम दुख में सुख में सब समय उनके साथ रह करके सेवा करनी चाहती, इसलिए अंत में उनकी बात पतिव्रता हो तो कैसे सीता जी से। आजकल थोड़ा सा मन मोटाव हो गया बस तलाक तैयार है कोर्ट में, थोड़ी सी बात पर भी अनबन हो गई और बस तलाक, और नहीं तो तलाक नहीं हुआ भी तो पति के साथ में नहीं रहेंगे या स्त्री के साथ में है, वो अपना अलग रहे कमाए खाए और हम अलग रहे। विशेष करके विदेशों में तो एकदम ऐसा है, जीवन सुखी नहीं है किसी का, विवाह करना लड्डू दिल्ली का लड्डू खाया वो भी पछताया, नहीं खाया वो भी पछताया, ये ऐसे है दिल्ली का लड्डू है, कहीं सुख नहीं है। क्यों? जब विवाह कर लिया तो क्यों किया, पीछे पछतावा होता है, अब विवाह नहीं किया तो क्यों नहीं किया, सीताजी वन में गई, यहाँ भी सुना सब, और भी बहुत सी बातें बतलाया है। ये भी बतलाया कठोर परीक्षा, जिसमें दंडकारण्य में ये लोग गए, राम ने कहा सीते तुम तो हमारे हृदय में सब समय बसती, और मैं कुछ जगत की लीला करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमको कहीं अलग से रख दें। अलग होना संभव नहीं है, ये भी जगत की बाहरी दृष्टि से अग्नि को सौंप दिया कुछ दिनों के लिए सीता जी को अपने पास। अभी हम लोग वहां गए नैमिषारण्य में, तो देखा एक पताल में ऐसी जगह अभी बनी हुई है जिसमें अग्नि को रामचंद्र जी ने सीता जी को समर्पण कर दिया, और माया सीता बना ली माया की, और उसी से सारी लीला हुई। असली सीता जी को स्पर्श नहीं कर सका राम, कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता है, भक्त उनके चरण कमलों का दर्शन करते हैं स्पर्श कर सकते हैं, और कोई नहीं। हनुमान भी जिनको स्पर्श नहीं किया, बस माते माता जी बस उनके चरणों में जुड़े रहते। जब मारा सबको और फिर मारीची को के वजह से उनका अपहरण हुआ, तो किसका अपहरण हुआ?
माया सीता।
माया सीता जी कहाँ है? अग्नि में नहीं है, अग्नि में तो जैसे ऊपर के लिए
वो
शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती, शक्ति शक्ति मत हो एक ही है, किंतु भगवान की शक्ति रूप धारण कर लेती है, हमारी शक्ति कोई भी रूप नहीं धारण करती। राम की सब शक्तियां हैं, सोचने की, विचारने की, चलने की, देखने की, ये सब एक एक रूप धारण कर सकती है। लंका विजय हुआ, लंका में विजय के पश्चात जब आई राम के पास में, राम ने कहा जी बहुत अच्छा हुआ आप पैदल पधारिए, जैसे कि ये कपि भालू बंदर सभी आपको दर्शन कर सके, आपके लिए इन्होंने जीवन दान किया। पैदल पालकी से उतर करके नीचे आए, जब एकदम निकट में आ गई, अभी जाओ उधर खेलो, तो बोले रामचंद्र जी गंभीर हो करके, अब आप जहां से आई हैं वहां जा सकती हैं, अब हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, रावण के घर में रहकर और फिर वहां से आना मैं नहीं स्वीकार कर सकता, मैं अपनी आन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कुल की मर्यादा के लिए मैंने युद्ध लड़ा, आपके लिए नहीं, तो मैंने उसे जीत लिया है और हम लोगों का मर्यादा ठीक है, अब आप कहीं भी जा सकती हो, मैं कामी पुरुष नहीं हूं, बन बन में तुम्हारे लिए कामी होकर के नहीं रोया, अब जा सकती। सीता जी ने कहा जी पहले क्यों नहीं बतलाया, सब कुछ दे दीजिए तो सब कुछ दे करके नंगे हो जाइए, तब फिर आपसे कुछ नहीं कोई मांगेगा, नहीं तो आप भी पधारिए, जल्दी जल्दी पधारो। क्या
कहा?
उन्होंने कहा मुखर होकर के कहा, तो पहले आपने क्यों नहीं, ये कौन बातचीत कर रही?
माया
वाली सीता। अभी असल सीता जी पर्दे के पीछे हैं, लक्ष्मण हमारे लिए चिता बनाओ, और चिता बनाया राम की तरफ में देखा, राम गंभीर होकर के बैठे हैं, किस लिए दिखला रहे हैं ऊपर से, सोचे कि इसी बहाने से सीता जी को ग्रहण कर। सीता जब बन करके तैयार हो गई तो सीता जी उसमें बैठ गए और ध्यान किया आग लग गई, किंतु वो शीतल बन गई, और उस आग में से अग्नि देवता निकल करके सीता जी को लेकर राम सर बोले सीता जी परम पवित्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैं नहीं हूं, वायु देवता है बोले जैसे मैं सर्वत्र जाता हूं विचरण करता, ऐसा कोई जगह नहीं मैं नहीं जानता, मैं सर्वत्र जाने की वजह से जानता हूँ सीता जी पर। इस समय महाराज दशरथ वहां से अपने धाम से आए, बोले सीता पवित्र है, तुम इसे ग्रहण करो। ऋषि महर्षि सब लोग आकर के बोले, तो फिर उनको ग्रहण किया। यहां तक तो ठीक है। अयोध्या में लौट आए, 11,000 वर्ष राज्य किया। अंतिम मान लो कि 2-4 वर्ष पहले रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी मेरा मन नहीं लगता, तो मुझको यज्ञ करना चाहिए, और क्षत्रिय राजाओं का ये जरूरत है, आवश्यक है उनके लिए यज्ञ करना, तो मैं यज्ञ करना चाहता हूं, अश्वमेध यज्ञ। आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं? आपने स्त्री को त्याग कर दिया, इसलिए आप अधिकारी नहीं है। फिर भी गुरु जी हम पर दया करके यज्ञ कराइए। मैं कहा तो सीता जी को बुला लाओ, हम जानते हैं जी कहाँ है, तो ऐसा मत कीजिए, मैं अब सीता जी को नहीं बुलाऊंगा, फिर दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे लिए 1,000 स्त्रियां राजी हैं, राजकुमारियां तुमसे शादी कर, तुम शादी करो। ऐसा कभी जीवन में नहीं कर सकता। तो फिर क्या, हमको यज्ञ हमको जरूर कराए, कोई उपाय निकाले। तो उन्होंने कहा जी एक बात करो, था सीता जी की सोने की मूर्ति बनाओ, प्रतिमा, और उनके साथ उनको बाएं रख करके यज्ञ करो। ठीक है, मैं इस पर राजी हूं। तो सीता जी की मूर्ति बनाई गई और यज्ञ करते थे 1,000 ब्राह्मण, 1,000 ऋषि महर्षि और सब संसारी लोग। नैमिषारण्य में ये हुआ था, गोमती नदी के किनारे छत्र के छत्र चल रहे थे। छत्र माने का जहां पर की खाना इत्यादि बनता है, बढ़ता है, ये सब ऋषियों को सब दान दक्षिणा सब दी जाती थी, और यज्ञ होता था सवेरे शाम को, और दोपहर में समय खाली रहता था, उसमें बैठ करके पुराण पाठ इत्यादि ब्राह्मण लोग करते थे, ऋषि महर्षि लोग करते थे, सब लोग सुनते। उसी समय में वाल्मीकि ऋषि के दो शिष्य, सीता जी के पुत्र, राधे राधे राधे,
जय 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 श्री राधे,
बजाओ ताली। भूल गया था, उसके पहले सीता जी का वनवास हो चुका था एक धोबी के कहने से। एक धोबी ने कहा, मैं राम नहीं हूं, तुम शाम हो करके रात होने आई, अब तुमने कहां से घूम करके आ रही है, मैं नहीं कदा। ऐसे दो एक जगहों में सुना, उनके दूतों ने और राम को बतलाया, वो मेरे विरुद्ध कानाफूसी राज्य में चल रही है, इसलिए लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि तुम इसे जंगल में कहीं छोड़ो। उन्होंने कहा ये सीता चाहती थी ऋषियों की पत्नियों से मिलना, उनको कुछ कपड़े लत्ते उपहार देना, आभूषण, ये सब गठरी बना लो और इसी बहाने से ले जाकर के छोड़ो। तो अयोध्या से दूर प्रयाग में, इलाहाबाद जिसको आज कल कहते हैं प्रयाग में, वहीं पर उस पार ही छोड़ दिया नदी से पार करके। और ये डकर जब सुनी लक्ष्मण जी से, जी हमको सदा के लिए छोड़ दिया है हमारे पति ने, तो डकर डकर करके रोने लगी। उस समय गर्भवती थी, रोने जब लगी तो वाल्मीकि जी आ गए, रामायण लिख रहे हैं और यहां तक ही लिखे हैं, अब लिखते जा रहे हैं। अब सीता जी को अपने आश्रम में रखा, वहीं उनके दोनों बच्चे हुए लव कुश, अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। सीता जी किसी प्रकार से उन बच्चों में अपना स्नेह रख करके पालन पोषण, तीर धनुष सिखलाना और जो क्षत्रिय उचित गुण है वो सबको सिखलाने लगी, और वाल्मीकि जी उनको काव्य छंद इत्यादि स्वर राग रागिनी युद्ध विद्या सब विद्याओं में निपुण कर दिया। जब वो छोटे से बच्चे थे 10-11 वर्ष के, दोनों जमज थे, एक ही दिन एक ही रात में उत्पन्न हुए लव और कुश। अब उस जिस समय राम जी वहां पर अश्वमेध यज्ञ गोमती के किनारे नैमिषारण्य में कर रहे थे। उस समय वाल्मीकि जी ने कहा जिससे जाओ, सुनते हैं कोई राजा आए हैं और उनके सब हजारों लोग ऋषि महर्षि सब आए हैं, तुमने जो वाल्मीकि रामायण जो मैंने बनाई है छंद के साथ में, राग रागनियों के साथ में, मूर्छना ऊपर ले जाकर के ऊपर और नीचे के राग से और बड़ी सुंदर सुंदर से तरह तरह के स्वरों से आलाप से सब लोगों को मुग्ध कर देना चरित्र सुना करके। तो उन्होंने उन लोगों को रावण बत्तक का सारा चरित्र पढ़ा दिया था और उनको कंठस्थ तथा वाल्मीकि रामायण उसको स्वर छंद से गाया जा सकता है। बच्चे देखने में कैसे, राम से भी अब सुंदर, अब राम तो कुछ परिणत वयस्क के 11,000 वर्ष की उम्र हो गई किंतु उनको गोफ नहीं आई, दाढ़ी भी नहीं। ये भगवान का एक वैशिष्ट है। आजकल के बहुत से भगवान हो रहे हैं, विशेष करके भारत में हजारों भगवान, और वो टीबी से, कैंसर से और तरह तरह के भगंदर के रोग से मरते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, ये सब पक जाते हैं। अरे भगवान को ऐसा नहीं होता, भगवान का लक्षण ही नहीं है। और मूर्ख ऐसे लोग, ये ऐसे लोगों को भगवान कैसे मान लेते हैं। अभी वो भगवान जेल में गया लोगों को धोखा देने के वजह से। एक साईं बाबा कोई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता फिर भी लिया, आप लोग सावधान रहे, जितने भी भगवान हैं उनसे असावधान रहे, भगवान ऐसे नहीं होते, उसके लक्षण होते हैं, शास्त्रों में उसका वर्णन होता है, तभी वो भगवान है। उनमें ऐसी विशेष विशेष चीजें होती हैं, उनमें ऐश्वर्य ऐसा होता है जो कि अलौकिक होता है। जैसे तैसे लोगों को सिद्ध महात्मा मत मान लेना, लोगों का अवतार भगवान का अवतार ही है, शंकर के अवतार है, हनुमान जी के अवतार है, मत मानना। महापुरुष है ठीक है, महापुरुष के रूप में हमने, किंतु भगवान के लक्षण तो पहले ही बतला गए हैं और उसका पूरा वर्णन है, जैसे इतने आएंगे इतने होंगे, ये सब शास्त्र में पूरा है। अभी कल के आएंगे उनके लिए भी बतला दिया गया, बुद्ध जी के आने के पहले ही ये सब बतला दिया, कृष्ण के आने के पहले ही ये सब है। कभी भी फेर में मत पड़ना चक्कर में, शुद्ध रूप में भगवान का भजन करना और शास्त्रों पर विश्वास रखना, गीता भागवत पर। तो वो उनको कहा, और दोनों बालक तो राम तो थोड़ा प्राउड हो गए हैं और इनकी उठती उम्र है वयसंधि की, बड़ी खूबसूरत कोमल शरीर, गला कैसा सुरीला, राग रागनी से भरा हुआ। शायद रामचंद्र जी ने ये गान की संगीत की शैली कहीं से शिक्षा नहीं उनको मिली, इनको तो इन्होंने वाल्मीकि जी ने दी है सारी शस्त्रों की सब कुछ। वो दोनों गए, सिर पर शिखा जो जुड़ा होता है उसको बांध लिया ऋषि महर्षि जैसे, और कपड़े किस चीज के, तंतुओं के बलकल वस्त्र पहन लिए, और इतनी खूबसूरत और वीणा लेते हुए दोनों और रामचरित्र गान करने लगे। जब आरंभ किया सब लोग देख करके रोने लगे, कौशल्या मैया, सुमित्रा, कैकेयी और हनुमान, जामवंत और जितने वहां के भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सब लोग थे, कहे अहो ये तो यदि छोटे नहीं रहते बड़े तो ये राम इनमें कोई अंतर नहीं दिखता है, और इतना सुरीला गाते हैं। सभी लोगों की आंखें डबडब आ गई, रोने लगे, यहां तक कि राम लक्ष्मण भी रोने लगे। उन्होंने एक सर्ग की कथा सुनाई और इसके बाद में शाम हो गई तो चलने लगे, तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा इसको कुछ इनाम देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। ऐसा करो, सोने के थाल में हीरे मणि जवाहरातों से भरी हुई और इनको दी जाए खजाने की तरफ से, और एक बात करना, इससे पूछना तो जरा तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारी मैया बाप कौन है, कहाँ के रहने वाले हो, जरा ये पूछ लेना। लक्ष्मण जी गए, बड़े प्यार से दोनों को प्यार किया। उन्होंने, वाह तुम तो बहुत गजब के लड़के हो, ये पहले तो मैं तुमको पुरस्कार, राजा रामचंद्र जी ने पुरस्कार दिया, किंतु अभी तक वो नहीं जानते थे कि हमारे ये पिता है और मैया हमारी सीता जी इनकी पति पत्नी, कि बस कथा ही तक तो अभी तक जानते थे। तो उन्होंने कहा जैसे ये तुम उपहार लो, हमें क्या है इसकी जरूरत, वर्षी जी के आश्रम में, हमारे गुरु के आश्रम में रहते हैं, केले अमरूद आम सब मिल जाते हैं, कोई बर्तन की जरूरत नहीं, पत्ते केले और ये सब के हैं, पहनने के लिए तंतुओं के कपड़े बने हुए हैं, हमें इसकी क्या जरूरत है, ये तो राजकोष में ही शोभा पाएगा, इसलिए हमको ये जरूरत नहीं है। हमारे गुरु जी ने कभी नहीं कहा जी रुपये ले आओ, पैसे ले आओ, इसलिए हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो और भी कुछ प्रभावित हुए, धीरे से बोले जे बेटे ये तो बतलाओ तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारे पिताजी और माताजी का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं। जैसे मैं तो समझता था जो आप महाराज के भाई हैं, सब नीतियों में कुशल हैं, किंतु मैं देखता हूं कि आपको नीति नहीं आती, छोटा सा बच्चा उनसे बोला। अरे हम ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियों से गुरु का नाम पूछना चाहिए, हम ब्रह्मचारियों से माता पिता का नाम जो पूछते हैं उनको धर्म का शास्त्रों का ज्ञान नहीं। तो हम आपसे बतलाते हैं कि हम वाल्मीकि जी हमारे गुरु हैं, मैं इन्हीं का छात्र और यही हमारे गुरु हैं, और दूसरा हमारा कोई परिचय नहीं। आप लोग भी हमारे ब्रह्मचारियों से सन्यासियों से मत पूछे आपका घर कहाँ था, आपके पिताजी कहाँ थे और कौन से जाति में थे, आपके पिताजी क्या थे, मैया क्या, खबरदार। और वो भी यदि बेवकूफ है, यदि वो ये सब बतलाए, परम बेवकूफ, उनका सन्यास ब्रह्मचार्य जब भी ठीक नहीं है। पूछो गुरु का नाम पूछो, हम लोगों की गुरु परंपरा चलती है, शिष्य परंपरा चलती है, वो माता पिता का परंपरा हम लोगों ने वही पर समाप्त। हम जानते हैं कि कोई किसी का पुत्र इस जगत में नहीं, ये सब क्या है, एक दिखलाने के लिए यह सब है, ये कुछ लौकिक परिचय है, पारमार्थिक परिचय गुरु देता है, और हम कृष्ण के नित्य दास दासी हैं, यही हमारा परिचय है, किंतु अभी हम हमारे गुरु वो हैं सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए, और गृहस्थों के लिए जैसा चल रहा है चल, किंतु सन्यासी ब्रह्मचारी का। लक्ष्मण जी झेप गए, सोचा जी तो हमने गलती की। मैया कह रही है जैसे हो न हो, ये हमारे जो नाती होते अब तक, तो सीता जी को उस समय गर्व था, जरूर न जरूर ऐसे ही हित होते, राम को भी विश्वास हो गया ये हमारे बेटे हैं, और सारी अयोध्या को भी विश्वास हो गया, दूसरे नहीं वही है। रामचंद्र जी ने उस समय वाल्मीकि जी को बुलाया, बुलाकर बोलिए महर्षि एक बात है, मुझको जहां तक संभव लगता है मेरी सीता जी आपके घर में है, आपके आश्रम में है, आप कल यदि उनको इस सभा में इसी समय में यदि आप लाएं तो आपका उपकार मानूंगा, उनसे कहेंगे जो वो संकोच न करें, आप उनको लेकर। अब वाल्मीकि जी गए वहां, अभी बात ही हो रही थी इतने में लव कुश वहां पर पहुंचे, आज बहुत विलंब हो गया था इन सब कारणों से, शाम हो गई, सीता जी अपने बच्चों के लिए राह देख रही थी, जब वो आए तो दोनों बेटों को अपने गोदी में बैठा लिया। अरे बेटा आज बहुत देर कर दिया तुमने, क्यों देर हो गई, ओ मैया आज एक बात हमने देखी, हमारे गुरु जी के आदेश से हम लोग रामायण पाठ कर रहे थे, इसके बाद में हम लोग देखा क्या, एक बड़ी विचित्र था, वहां पर एक सोने की मूर्ति हमने देखी, वो बोल नहीं रही थी तू बोल रही है, बस इतना ही अंतर, बस इतने सुनते ही सीता जी का धैर्य दूर हो गया और वो रोने लग गई, बड़ी जोर करके टकर करके रोने, अब वो उनके यहाँ पर स्पर्श करके बोले, अरे मैया तू रोने क्यों लगी? अब वो क्या बतलाए, मन में सोचती हैं राम हमें कभी नहीं त्याग सकते। लौकिक दृष्टि के लिए राजा ने रानी को प्रत्याग किया, हमें नहीं किया, नहीं तो हमारी ये मूर्ति क्यों रखते हैं, हमारी पूजा क्यों करते हैं। तो और भी उनका प्रेम ये हो गया और बड़ी जोर से रोने लग गई। वाल्मीकि जी ने आकर के उनको समझाया और कल की बात कही, ये आपको कल सभा में चलना है, आपको बुलाया गया है, राम ने बुलाया, तो ठीक है हमको बुलाए हैं तो जाएंगे। ठीक है, आगे आगे वाल्मीकि जी और दोनों बच्चों को अपने हाथों से पकड़ करके और सभा में गई। उस समय सारी सभा देख रही थी। जब वहां पर पहुंची तो राम को उन्होंने नमस्कार किया, हम रहती आप लोग रहती तो नहीं करते, जब हमको निकाल ही दिया है तो नमस्कार की क्या जरूरत है। ये सीता जी की विशेषता है, इतनी भारी विशेषता है सीता जी। इतना होने पर भी राम को नहीं त्यागा, हृदय से उन्हीं के वो प्रियतम के रूप में देखा। राम ने कहा, मैं जानता हूं तुम सब प्रकार से पवित्र हो, तुम त्यागने लायक नहीं हो, किंतु लौकिक रीति से हमने ऐसा किया, लोगों की प्रतीति जिससे आपको हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई प्रमाण दो ठोस जिससे मैं समझ सकूं जहां तुम पवित्र हो। सीता जी बोली, अभी भी प्रमाण की जरूरत है, प्रमाण तो सभी हो ही गया है, दशरथ जी ने प्रमाण नहीं दिया, वायु अग्निदेव ने नहीं दिया और सब देवताओं ने नहीं दिया, उस पर भी विश्वास नहीं हुआ, तो ठीक है आपके कहने से मैं अंतिम प्रमाण देती हूं, यदि मेरे इच्छा के अनुसार न हो करके हमारे इच्छा के विपरीत किसी ने स्पर्श कर दिया हो, इसके अतिरिक्त यदि मैंने सचमुच अपने तन से मन से वचन से अंतर से किसी को भी आपके अतिरिक्त नहीं स्पर्श किया हो, तो हे धारित्री माता पृथ्वी माता तुमसे निकली हूं, तुम अपनी गोद मुझे ले लो। फिर बोली, यदि सचमुच में मैंने तन मन और सब प्रकार से राम के अतिरिक्त मैंने कभी भी किसी का चिंतन न किया हो, हे मैया तुम फट जाओ और अपनी गोदी में हमें संभाल लो। तीन बार कहा, पृथ्वी फट गई, उसमें देवी पृथ्वी देवी आई, सोने का सिंहासन आया और सीता जी को झपट करके अपनी गोदी में बैठाया, और जैसे ही बैठाया क्या हुआ, पृथ्वी लग गई, सब लोग हाहाकार कर उठे, रामचंद्र तो धनुष मार लेकर के हाथ, तू मेरी सास लगती है पृथ्वी, अभी सीता जी को बाहर करो और नहीं करती हो तो मैं तो खंड बिखंड करके सीता जी को मैं प्राप्त करूंगा, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। विलाप करने लगे सारे अयोध्या के लोग, विलाप करने वाल्मीकि का जी ओ समाप्त हो, सीता जी तुम्हारे लिए गोलोक में
साकेत धाम में
तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है, और यही तक रामायण पूरा है, इसके बाद रामायण नहीं, इति वाल्मीकि रामायण यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप स्थिर होइए, बच्चों को ले जाइए और अयोध्या के राजगद्दी पर इनको लक्ष्मण के पुत्रों को लक्षणावती लखनऊ है ना उधर में, और भरत जी को भरतपुर का और शत्रुघ्न जी को मथुरा का, और उनके बेटों को वो लोग सब दे करके प्रस्तुत होकर के रही है। फिर जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो फिर आप लोग अयोध्या में सरयू के किनारे आइए, गुप्तार घाट है, बस वहीं पर सब लोग रामचंद्र जी के साथ में चतुर्भुज रूप धारण करके, और सब लोग गोता लगाया और देखा कि हम तो साकेत धाम में अयोध्या में एकदम चले। इति वाल्मीकि, ये सीता जी का चरित्र है, हम लोगों के लिए ऐसा बनाया है, क्यों बनाया, कारण है इसमें, प्रेम के दो पहलू होते हैं, इस चीज को समझो, एक पहलू होता है मिलन का और एक होता है विरह का, इसके बिना वो प्रेम पूरा नहीं होता है। प्रेम में कैसी, मिलन में कैसा भाव है और विरह में कैसा भाव होता है। यदि विरह में छोड़ दिया तो ये प्रेम नहीं रहा, विरह में भी प्रेम रहे उससे और 10 गुना। इसलिए राधा कृष्ण का पहले मिलन दिखलाया गया, गोपियों का मिलन दिखाया, अंत में विरह दिखाया। विरह कैसा, गोपियों का प्रेम से मतवारी हो गई है, सब कुछ भूल गई, यहां तक कि मूर्छा को भी पार कर गई और तन्मय होकर के कृष्ण जैसे बन जाती है। श्रीमद् भागवत में इसका अद्भुत रूप में, गोपी गीत में, भ्रमर गीत में और सब जगहों में वर्णन मिलता है। विरह का प्रेम से भी, मिलन से भी विरह का भाव अधिक। उसी प्रकार से सीता जी का, राम का मिलन तो है यह सुखदायी है, किंतु विरह उनका जो है, विप्रलंब भाव विरह, ये कैसा है, उससे भी अपूर्व है। लोगों को लीलाओं में तन्मय कराता है, चित्त को द्रवित कराता है भगवान की ऐसी सब लीलाएं। इसलिए विरह और मिलन और विरह नाम की दो लीलाओं को दिखला करके संसार के लोगों को पार करते हैं। आज हम लोगों का संक्षेप में हमने थोड़ी सी दो एक कथाएं कही। यदि जिस ढंग से मैं कह रहा हूं और मुझे समय मिल रहा है एक एक घंटा, ऐसे करने से 1-2 वर्ष 3 वर्ष में भी समाप्त नहीं होगा भाई, भागवत न होगा न रामायण ही होगा। एक एक दिन एक एक कथा कहेंगे और कितनी करोड़ों कथाएं हैं और कितनी सार गर्भित हैं। मनुष्य जीवन सफल हो सकता है, तत्व का ज्ञान अपने आप होगा, संसार से वैराग्य भी होगा, भगवान में रुचि आएगी इन कथाओं से, है ना। तो भगवान आप लोगों पर कृपा करें, आप लोगों को ऐसे सुयोग मिले तत्व और वैराग्य से युक्त भगवान की प्रेममयी, विरहमयी और मिलनमयी कथाओं को श्रवण को सुयोग मिले, जो आप लोग शीघ्र ही भव सागर से मुक्त होकर के भगवान के चरणों में चले, जन्म मरण का कष्ट सदा के लिए दूर हो जाए और नित्य भगवान की लीला में प्रवेश कर करके आप वहीं पर सुख से शांति से अपने इष्ट देव की सेवा करें। बस इसी आशीर्वाद के साथ में मैं इसको समाप्त करता हूं। अभी हम लोग एक नाट्य होगा अभिनय, और अभिनय के बाद में हम लोग यहां से भागवत लेकर के आए थे, उस भागवत को 1-2 बार यहां से घूम करके भागवत को हम लोग रखेंगे। और हम समझते हैं कि मुझसे भूल हो गई, एक एक पुष्प लाते तो भागवत को भगवान जैसा है ना, हाँ सबको दे देंगे। वो भागवत को अंत तक प्रणाम करने, परिक्रमा करते समय एक एक आदमी अपना पुष्प दे करके और प्रणाम कर ले, हे भागवत जी आप हमारे ऊपर में, हे भागवत कथा हमारे ऊपर में दया करेंगे, हमारे हृदय में आविर्भूत हो, इस तरह से प्रणाम करके विधिवत हम लोग सुखदेव गोस्वामी और श्रोता की भांति इसको हम लोग समाप्त करें। अभी आप लोग अभिनय प्रस्तुत।
As the class on the 23rd of May 2002 in the evening in Houston. Hare Krishna.
आगे आगे वाल्मीकि जी और दोनों बच्चों को अपने हाथों से पकड़ करके और सभा में गई। उस समय सारी सभा देख रही थी। जब वहां पर पहुंची तो राम को उन्होंने नमस्कार, हम रहती आप लोग रहते तो नहीं करते, जब हमको निकाल ही दिया है तो नमस्कार की क्या जरूरत है। ये सीता जी की विशेषता है, इतनी भारी विशेषता है सीता जी। इतना होने पर भी राम को नहीं त्यागा, हृदय से उन्हीं के वो प्रियतम के रूप में देखा। राम ने कहा, मैं जानता हूं तुम सब प्रकार से पवित्र हो, तुम त्यागने लायक नहीं हो, किंतु लौकिक रीति से हमने ऐसा किया, लोगों की प्रतीति जिससे आपको हो, मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई प्रमाण दो ठोस जिसे मैं समझ सकूं जहां तुम पवित्र हो। सीता जी बोली, अभी भी प्रमाण की जरूरत है, प्रमाण तो सभी हो ही गया है, दशरथ जी ने प्रमाण नहीं दिया, वायु अग्निदेव ने नहीं दिया और सब देवताओं ने नहीं दिया, उस पर भी विश्वास नहीं हुआ, तो ठीक है आपके कहने से मैं अंतिम प्रमाण देती हूं। यदि मेरे इच्छा के अनुसार न होकर के हमारे इच्छा के विपरीत किसी ने स्पर्श कर दिया हो, इसके अतिरिक्त यदि मैंने सचमुच अपने तन से मन से वचन से अंतर से किसी को भी आपके अतिरिक्त नहीं स्पर्श किया हो, हे धारित्री माता, पृथ्वी माता, तुमसे निकली हूं, तुम अपनी गोद मुझे ले लो। फिर बोली, यदि सचमुच में मैंने तन मन और सब प्रकार से राम के अतिरिक्त मैंने कभी भी किसी का चिंतन न किया हो, हे मैया, तुम फट जाओ और अपनी गोदी में हमें संभालो। तीन बार कहा, पृथ्वी फट गई, उसमें देवी पृथ्वी देवी आई, सोने का सिंहासन आया और सीता जी को झपट करके अपनी गोदी में बैठाया, और जैसे ही बैठाया क्या हुआ, सब लोग हाहाकार कर उठे, रामचंद्र तो धनुष मार लेकर के आ, तुम मेरी सास लगती है पृथ्वी, अभी सीता जी को बाहर करो और नहीं करते हो तो मैं तो खंड विखंड करके सीता जी को मैं प्राप्त करूंगा, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। विलाप करने लगे सारे अयोध्या के लोग, विलाप करने लगे, वाल्मीकि का जी और समाप्त हो, सीता जी तुम्हारे लिए गोलोक में साकेत धाम में तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है, और यही तक रामायण पूरा, इसके बाद रामायण नहीं, इति
वाल्मीकि रामायण,
वाल्मीकि रामायण यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप स्थिर होइए, बच्चों को ले जाइए और अयोध्या के राजगद्दी पर इनको लक्ष्मण के पुत्रों को, लक्ष्मणावती लखनऊ है ना उधर में, और भरत जी को भरतपुर का, और शत्रुघ्न जी को मथुरा का, और उनके बेटों को वो लोग सब दे करके प्रस्तुत हो करके रही। फिर जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो फिर आप लोग अयोध्या में सरयू के किनारे आइए, गुप्तार घाट है, बस वहीं पर सब लोग रामचंद्र जी के साथ में चतुर्भुज रूप धारण करके, और सब लोग गोता लगाया और देखा कि हम तो साकेत धाम में अयोध्या में एकदम। इति वाल्मीकि, ये सीता जी का हम लोगों के लिए ऐसा बनाया है, क्यों बनाया, कारण है इसमें, प्रेम के दो पहलू होते हैं, इस चीज को समझो, एक पहलू होता है मिलन का और एक होता है विरह का, इसके बिना वो प्रेम पूरा नहीं होता है। प्रेम में कैसी, मिलन में कैसा भाव है, और विरह में कैसा भाव होता है, यदि विरह में छोड़ दिया तो ये प्रेम नहीं रहा, विरह में भी प्रेम रहे उसे और 10 गुना। इसलिए राधा कृष्ण का पहले मिलन दिखलाया गया, गोपियों का मिलन दिखाया, अंत में विरह दिखाया, विरह कैसा, गोपियों का प्रेम से मतवारी हो गई है, सब कुछ भूल गई, यहां तक कि मूर्छा को भी पार कर गई और तन्मय होकर के कृष्ण जैसे बन जाती है। श्रीमद् भागवत में इसका अद्भुत रूप में, गोपी गीत में, भ्रमर गीत में और सब जगहों में।
विरह का, प्रेम से भी मिलन से भी विरह का भाव है। उसी प्रकार से सीता जी का राम का मिलन तो है, यह सुखदायी है, किंतु विरह उनका जो है विप्रलंब भाव विरह ये कैसा है, उससे भी अपूर्व है, लोगों को लीलाओं में तन्मय कराता है, चित्त को द्रवित कराता है भगवान की ऐसी सब लीलाएं। इसलिए विरह और मिलन और विरह नाम की दो लीलाओं को दिखला करके संसार के लोगों को पार करते हैं। आज हम लोगों का संक्षेप में हमने थोड़ी सी दो एक कथाएं कही। यदि जिस ढंग से मैं कह रहा हूं और मुझे समय मिल रहा है एक एक घंटा, ऐसे करने से एक दो वर्ष तीन वर्ष में भी समाप्त नहीं होगा भाई, भागवत न होगा न रामायण ही होगा। एक एक दिन एक एक कथा कहेंगे और कितनी करोड़ों कथाएं हैं और कितनी सार गर्भित हैं, मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। तत्व का ज्ञान अपने आप होगा, संसार से वैराग्य भी होगा, भगवान में रुचि आएगी इन कथाओं से, तो भगवान आप लोगों पर कृपा करें, आप लोगों को ऐसे सुयोग मिले तत्व और वैराग्य से युक्त भगवान की प्रेममयी विरहमयी और मिलनमयी कथाओं को श्रवण को सुयोग मिले, जो आप लोग शीघ्र ही भव सागर से मुक्त होकर के भगवान के चरणों में जन्म मरण का कष्ट सदा के लिए दूर हो जाए और नित्य भगवान की लीला में प्रवेश कर आप वहीं पर सुख से शांति से अपने इष्ट देव की सेवा करें। बस इसी आशीर्वाद के साथ में मैं इसको समाप्त करता हूँ। अभी हम लोग एक नाट्य होगा अभिनय, और अभिनय के बाद में हम लोग यहाँ से भागवत लेकर के आए थे, उस भागवत को एक दो बार यहाँ से घूम करके भागवत को हम लोग रखेंगे, और हम समझते हैं कि मुझसे भूल हो गई, एक एक पुष्प लाते तो भागवत को भगवान जैसा है ना, हाँ सबको दे देंगे। वो भागवत को अंत तक प्रणाम करें, परिक्रमा करते समय एक एक आदमी अपना पुष्प दे करके और प्रणाम कर ले, हे भागवत जी आप हमारे ऊपर में, हे भागवत कथा हमारे ऊपर में दया करें, हमारे हृदय में आविर्भूत, ईश्वर से प्रणाम करके विधिवत हम लोग सुखदेव गोस्वामी और श्रोता की भांति इसको समाप्त। अभी आप लोग अपने प्रस्तुत कीजिए।
Let's end the class on the 23rd of May 2002 in the evening in Houston. Hare Krishna.